तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे हो गया तू बलिहार, ब्रह्मा तेरे तन मन में विश्व का किया उद्धार।
ओम शांति। ओम शांति। कि बाबा ने अभी हमें प्रकृति का भी मालिक बनाया है। वैसे तो हर एक अपने प्रकृति का मालिक है ही, प्रकृति मालिक के ऑर्डर से चलती है। और मालिक प्रकृति का कौन है? वो अपने प्रकृति को कैसे चलाता है, ऑर्डर कैसे करता है, और फिर किसके द्वारा ऑर्डर करके और चलाता है, यह सारी नॉलेज यह अपने आप को जानना, पहचानना और अपने अंदर के सूक्ष्म स्वरूप को देखना, ये किसका काम है? किसका है? किसका? कोई भी जवाब तो दो। पूरा क्लियर न पहुंचे पर जवाब तो देंगे तो बुद्धि काम करेंगी, और जो बुद्धि से जवाब देंगे और फिर सुनेंगे तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद फिर उसमें अपना विस्तार से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो बात इतनी क्लियर अपने आप में समझ में आएंगी। जो सदा मालिकपन की अथॉरिटी से स्वयं को चलाते रहेंगे, और वो मालिकपन की अथॉरिटी उस प्रकार से जो फिर अपने आप नेचुरल काम करती रहे। तो ये तो हम सबको पता है कि इस शरीर से न्यारी और शरीर को चलाने वाली कौन है? सबका एक ही जवाब है ना? हाँ? क्योंकि यहाँ हम सब वो इकट्ठे हुए हैं जो हम ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अपन को कहलाते हैं, और ब्रह्मा जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ही हमें यह सारी नॉलेज, यह सत्य ज्ञान, सत्य पहचान हम बच्चों को दी है। अब जो पहचान बाबा ने हमें दी है उस पहचान को बरोबर हमने अपने जीवन में कितना काम में लाया है, और जब काम में लाया है तो उससे हमें क्या लाभ मिले हैं, ये हर एक को अपने आप को देखना है। देखते भी रहते होंगे क्योंकि समय समय पर बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपन को चेक करो, चार्ट लिखो। तो हम जो अपने को स्टूडेंट कहलाते हैं, बच्चे भी है, स्टूडेंट भी है, और सतगुरु के हम यहाँ तो चेला नहीं कहा जाता है, पर उसके भी हम बच्चे हैं, सच्चे बच्चे। जब सतगुरु कहा जाता है तो कहा जाता है सतगुरु की आज्ञा माने माथे, जब बाप कहा जाता है तो बाप और बच्चे के संबंध में बच्चे का ये फर्ज बनता है जो बाप आज्ञा करे, शिक्षा देता जाए, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में काम में लाते रहें। और टीचर की पढ़ाई से तो लौकिक में भी जानते हैं, जितना हम पढ़ाई में ध्यान दें और पढ़ाई पढ़ते जाएं, उतना हम जीवन में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। अभी हम आते हैं पहले बाप के संबंध से, क्योंकि बाबा ने जब हमें नॉलेज दी, जब बाबा ने यज्ञ स्थापन किया, यज्ञ स्थापन में पहले पहले जो हम लोग आए, तो जैसे बाप याद होगा, अभी तो 18 जनवरी में बाप दादा की साकार बाबा की भी सारी विशेषताओं की स्मृतियां आती रहती होंगी, और आप लोगों को याद होगा अव्यक्त बाप दादा ने साकार बाबा के समर्पित होने के 10 कदम बताए थे। पहला, दूसरा, तीसरा आता है, या जिनको याद आता है, अभी याद करना पड़ता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को, बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बताया था, पहला कदम बुद्धि की समर्पण था, बाप के प्रति, शिव बाबा के प्रति। जो अपनी लौकिक बुद्धि है उसको समर्पण, समर्पण का अर्थ सच्ची माना में कहा जाए तो जो अपने में भरा हुआ है, जो हम दुनिया को जिस नजर से देखते, समझते और करते हैं, उस बुद्धि का हमें समर्पण अर्थात उसका अर्पण भाव, बाबा के अर्पण कर दी, जो बाबा कहे, जैसे बाबा सिखाए, जैसे चलाए, जैसे निश्चय बुद्धि में कहा जाता है ना, जैसे चलाओ, जो बिठाओ, जो खिलाओ, जहां बिठाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। यह हम वायदा केवल मुख से नहीं परंतु अपनी सच्ची दिल से, बाप जो कहे वही हमारा। तो हम बता रही थी, वास्तव में हमारे ब्राह्मण जीवन का सही माना में अगर नियम कहें, जब हम बाबा के पास आते हैं तो निश्चय करके ही आते हैं कि भगवान हमें मिला है। भगवान की परिभाषा हम सब जानते हैं, परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व का रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, ऐसा बाप हमें मिला। जब ऐसा निश्चय बुद्धि हम है और बाबा के आकर के बनते हैं, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है, जो बाप कहे उसी प्रमाण ही करते चले, क्योंकि हम बच्चे हैं, अर्थात ईश्वर के संबंध में, ईश्वरी जन्म के हिसाब से हम कहेंगे। भले शरीर बड़ा है, भले शरीर के रीति से हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, वहाँ किस भी स्टेटस से चलते हैं, परंतु जब बाबा के बच्चे हैं तो हमें बच्चा होकर के अर्थात बाप की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को, जिसको एक शब्द में आज बाबा ने बताया, बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहो। अच्छे पुरुषार्थी वही है जो अपना हर कदम श्रीमत पर ही चलते हैं। उसमें हमारा वो फायदा है कि श्रीमत जो ऊंचे ते ऊंची मत है, जो कल्याणकारी मत है, और बाप विश्व कल्याणकारी जरूर हमें जो मत देगा कल्याण की ही देगा, जिसमें हमारा भी कल्याण भरा हुआ हो और हम औरों का भी कल्याण कर सके। उसमें निसंकोच हमें बाप की आज्ञाओं को पालन करते चलना है, लेकिन वो हम कर तब सकते हैं जब पहली जो पहचान हमें मिली है, बाप की भी पहचान और स्वयं की भी पहचान। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, परम आत्मा की संतान हूँ। जब हम आत्मा याद करें तो आत्मा के साथ हमें परम आत्मा, पिता परमात्मा भी जरूर याद आएगा ही। ऐसी स्मृति सदा हमारे अंदर में बनी रहे तो आत्मा फिर शक्तिशाली बनती जाती है। आत्मा के अंदर वो हिम्मत, वो उमंग रहता है, बाप जो कहता है वो मुझे जरूर इस जीवन में करना ही है। जब निश्चय बुद्धि हो करके बाप की शिक्षाओं को अथवा आज्ञा को हम इतना ऊंच भावनाओं से अपने जीवन के अंदर करते हैं, भले चाहे कोई कोई समय पर उसमें हमें डिफिकल्टी महसूस हो, परंतु भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है भगवान में विश्वास रखने से कितनी भी डिफिकल्टी सहज पार हो जाती है। जब भगत भी इस बात को मानते हैं तो हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे ज्ञानी तू आत्मा कहे, क्योंकि यह हमारा जन्म अविनाशी ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के आधार पर हुआ है। तो मैं बता रही थी जब हम शुरू शुरू में पहले आए, सचमुच हम लोगों की वह जीवन थी, भले ही उस समय हम एज में भी छोटे ही थे, परंतु दुनिया के रीति से तो चलते ही थे ना। तो फिर भी हमें जैसे बाबा चलाए और ड्रामा अनुसार समय ऐसा था, बाबा का पहला पहला शुरुआती थी यज्ञ स्थापना की, बाप की भी वो शक्ति थी जो हम जब बाबा के सामने आते थे तो बाबा का हमें साधारण रूप नजर नहीं आता था, भल आंखें तो वो ही रूप देखेंगी, परंतु उस रूप के अंदर वह शक्ति नजर आती थी। बाबा के नैनों से ऐसे लगता था कि साधारण हमें याद ही नहीं रहता था, ये स्मृति नहीं कि हम साधारण को देख रहे हैं, यही स्मृति जागृत होती थी और अंदर में बड़ी शुद्धता महसूस होती थी। ऐसा ही होता था, बस देखते ही रहे, देखने से अंदर आत्मा ऐसे महसूस करती थी जैसे कि हमारे अंदर कोई शक्ति बढ़ती जा रही है। क्यों? भगवान हमारे सामने है। बाबा को देखने से कभी तो बाबा का विष्णु रूप नजर आता था, कभी तो बाबा का वह मनोहर रूप, कौन सा? मोहिनी रूप, श्री कृष्ण। अधिकतर बाबा को विष्णु रूप से ही देखते थे, जिस कारण ये मन से भावना हटती ही नहीं थी, यही भावना बनी रही, भगवान हमारे सामने है, हम भगवान के पास आए हैं। और इसी भावनाओं से आने से पुरानी दुनिया के संबंध उन्हों से सहज ही अपना ममत्व मिट गया, अर्थात उन्हों की स्मृति नहीं रही। पुरानी दुनिया से तो ऐसे लगा जैसे कि अब ये हमारी दुनिया नहीं है, जबकि हम भगवान के बच्चे बन चुके हैं। अभी और उस समय में तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि यज्ञ स्थापना का समय था और हम आने से ही यज्ञ के अंदर रहे, जिस कारण वहां की जो बाबा ने दिनचर्या बनाई, जो आज तक भी चल रही है, उसी दिनचर्या में हम चलते रहे। जैसे बाबा चलाए, जैसे बाबा खिलाए, जो पहनाए, जहां बिठावे, क्योंकि उस समय बाहर की ये सेवाएं नहीं शुरू हुई थी, अजन यज्ञ स्थापन हुआ था। तो स्थापना में बाबा भी बताते हैं ना, यज्ञ में ब्राह्मणों को बिठाया जाता है, वो बैठ करके पढ़ते हैं। आज के जमाने में तो भक्ति मारे का यज्ञ तो शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तो हमारे पास बाबा का ये हमको ज्ञान सुनाता ही रहता था, समझानी देते ही रहते थे, और रोज रोज नई नई बात। परंतु उनमें पहले पहले ये पहला लेसन आत्मा का, जब ये पहचान मिली तो अंदर में एक धुन लग गई, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं आत्मा शरीर को चलाती हूँ। चलते रहेंगे तो भी अंदर ये स्मृति रहेंगी, मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूँ। बोलते हैं तो स्मृति रहती थी, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रहा हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ और मुख द्वारा, मुख से काम ले रहा हूँ, तो ये स्मृति और ये अभ्यास दिन रात। शुरू में आप लोगों ने हिस्ट्री सुनी होंगी, 14 वर्ष हम एक ही यज्ञ के अंदर, एक ही स्थान पर, इसी तपस्या में। तपस्या का मतलब ये नहीं कि हम कोई आसन लगा करके ही सारा दिन बैठे रहते थे, परंतु मन के अंदर लगन निरंतर बनी रहती थी, और उस लगन में रहते ही हर कार्य करते थे। कार्य भी यज्ञ का ही था, क्योंकि बाहर तो नहीं गए कहाँ, तो ये यज्ञ का कार्य सेवा। वैसे हर एक अपने घर में अपने शरीर निर्वाह के लिए तो हर एक काम करता है ना, और शरीर को सब कुछ देने के लिए खाना पीना ये सब, वो काम तो हर एक करता ही है। तो हम भी यज्ञ में ये काम जरूर करते थे, परंतु काम करते हुए अंदर में ये धुन लगी रहती थी, मैं आत्मा शरीर के द्वारा करा रहा हूं। तो यह स्मृति जागृत होने के कारण अंदर में जैसे कि चेतनता और उसके साथ वो शक्ति महसूस होती रहती थी, जिस शक्ति के आधार से कोई भी कुछ कहे। वैसे तो जब नया नया संगठन था तो सब की अधिकतर इस प्रकार की स्थिति थी, जिस कारण वहां जैसे कि हमने नया जन्म लिया है और जन्म लेने से पुराना भूल जाता है, जो कुछ नया देखते जाओ सुनते जाओ वो ही करने लग जाते हैं। तो हम लोगों की तो शुरू में ये नेचुरल जीवन ऐसी बनी जिसको हम मर जीवा जन्म कहते हैं। पुराने से मर गए और नया जन्म लिया, ईश्वर के पास जन्म लिया, ईश्वरी मेरा पिता है, जो वो शिक्षा देगा वो ही मेरी जीवन है। और इसी रीति चलने से पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने बोल, यहाँ वहाँ की बातें, वो समय उस संगठन में बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि शुरुआत थी। बाबा को यज्ञ उन्हीं पावर से, अपनी ऑलमाइटी पावर से चलाना था, इसलिए हम बच्चे भी उसी रीति से आगे बढ़ते गए। तो अभी हम देखते हैं नॉलेज का विस्तार बहुत है, सेवाएं हम लोग बहुत अच्छी करते हैं, परंतु सेवाओं में जो जो छोटी मोटी बातें आती है वो कहाँ कहाँ अपने लिए विघ्न रूप बन जाती है, जिसको पार करने में बड़ी मेहनत लगती है। जो पहली शिक्षा है कि हमें तो शरीर को अथवा ऐसे शरीरधारी जो भी है, अगर कोई भी व्यक्त भाव की बात करता है तो हमें सुनते हुए नहीं सुनना है। इसका अभ्यास तभी हमारा होता है जब हमारे अंदर में ये धुन लगी हो, मैं कौन और किसकी संतान। तब बाबा अभी भी कहते हैं बच्चों को, ये तो बड़ा नशा होना चाहिए, और जब ये नशा रहे तो अंदर में खुशी बनी रहेगी, इतनी खुशी मैं किसका बच्चा हूँ। और ये बात तो चलते फिरते उठते बैठते हम अपने आप से ये अभ्यास चालू रख सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि हमारी मन की स्थिति, मन के लिए जो गायन है कि मन बड़ा चंचल है, मन तो भागता रहता है, योग में बैठो तो मन लगता नहीं, अगर हम ध्यान से अपनी सच्ची दिल से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहें और अपने को देखें, तो हमें अंदर में यह स्मृति चलते फिरते उठते बैठते रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपना चार्ट लिखो। आज भी बाबा ने कहा ना, ये याद की यात्रा का समय बढ़ाते जाओ, अधिक समय ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि इस याद का ये फायदा है, भगवानों वाच है, मेरे को याद करने से तुम्हारे अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात, बड़ी ऊंची लाटरी कहे, अनेक जन्मों के अनेक पाप कर्म किए हुए हैं, जिस कारण हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, बुद्धि इधर उधर भटकती है। उसका कारण कि अनेक प्रकार के कर्म, जिसको कहे विकर्म कहो पाप कर्म कहो, क्योंकि विकारों के वश कर्म जो भी हमने किए हैं उसका खाता विकर्मों का खाता है, जिसकी सजा हमें मन को भी और कभी कभी शरीर को भी भोगनी पड़ती है। अब इन सब बातों को जब हम समझ लेते हैं तब ये अभ्यास हमें इस बात में बहुत मदद करता है कि मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली, बल्कि इस मन बुद्धि को भी चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। उसका कोई रूप नहीं, पावर है, चेतन शक्ति पावर है, जिस सकाश से ये शरीर काम करता है और वो आत्मा शरीर से काम कराती है मन बुद्धि के द्वारा। पहले संकल्प उठता है और संकल्प के अनुसार फिर कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को, अर्थात इन कर्म इंद्रियों से, इन मन बुद्धि से भी ऊपर, मैं उससे भी अति सूक्ष्म, साइंस वाले भी मन विचारों तक पहुंच जाते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए हैं जो उसकी चेकिंग कर लेते हैं, परंतु आत्मा तक साइंस भी नहीं पहुंचती है। आत्मा ये साइलेंस की शक्ति के आधार से, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है और वह अति सूक्ष्म प्रकाश रूप है, उज्जवल रूप। प्रकाश कभी, प्रकाश के ऊपर कोई आवरण नहीं आता है, परंतु अगर प्रकाश की शक्ति पूरी नहीं है तो डिम होता जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं, जो पहले दिव्यता संपन्न, पवित्रता संपन्न है, जहां विकार का नाम निशान नहीं, तब हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली, जिस कारण अपने जीवन में वह दिव्यता भी जागृत रहती है, जिन दैवी गुणों से हम जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं, वह हमारा दिव्य कर्म, दैवी गुण संपन्न कर्म, जिससे कोई हमारा पाप का खाता नहीं बनता है। तो कर्म इंद्रियों को वश में रखने के लिए पहले हमें अपनी आत्मस्मृति को पक्का करना पड़ेगा, और जितना हम आत्मस्मृति पक्का करेंगे तो बाप की याद भी बनी रहेगी, जो मुझे आत्मा को शक्तिशाली बनाती जाएंगी, जिस शक्ति के आधार से हम इन विकारों से स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। उस शक्ति के आधार से हमारे अंदर जो शुद्ध विचार, बाप भी हमें अविनाशी ज्ञान रतन देते जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि की जो समझ शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो शुद्ध बनती जाए, और शुद्ध सोच के द्वारा हमारे संकल्पों में शुद्धता आती जाए, सदा हमारे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प इस बाप के बताए हुए अविनाशी ज्ञान के आधार पर हमारे संकल्प हो, जितना जितना हमारे अंदर ये शुद्ध संकल्प रहेंगे तो मन शुद्ध पवित्र बनता जाएगा, उसके ऊपर कोई बुरे विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस कारण वह शुद्ध विचारों से जब हम कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं तो वो कर्म भी हमारा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इन विचारों के साथ हमें अंदर में स्मृति जागृत है, आत्मा चेतन शक्ति है जिसके अंदर ये स्मृति जागृत है। मैं इस शरीर की मालिक, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हूं। उस प्रकाश की क्वालिफिकेशन, वो प्रकाश चेतन होने के नाते से क्या क्या उसमें भरा हुआ है, क्या क्या वो कर सकता है, ये हमारा मंथन चलता रहेगा। और फिर उसके साथ साथ हमें कोई ऐसा क्लास मिल जाता है, समझानी मिल जाती है, ऐसी कोई शिक्षा, बाप के महावाक्य, जो मुझे फिर इन बातों में मदद करता है। और अगर सदा हमारा ये अटेंशन बना रहे, बाबा ने नॉलेज तो दे दी, पर नॉलेज को हमें अप्लाई कैसे करना है अपने आप पर, ये हमें सोचना है। सोचने का मतलब शिक्षा तो स्पष्ट है, बाबा हर प्रकार से हमें विधि बताते हैं कैसे स्वयं पर अपना नियंत्रण रखना है, हमारा कर्म इंद्रियों पर सदा यह अटेंशन बना रहे, कोई भी उससे विपरीत कर्म न हो, सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात श्रीमद के अनुकूल कर्म हो, जिससे हमारा कोई व्यर्थ खाता, पुराना खाता, पाप का खाता न बने। अर्थात यह शुद्ध विचारों के आधार से हम जो हमारे निश्चय में जो दृढ़ता आती जाएंगी, वह निश्चय की दृढ़ता हमें इस श्रीमत पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसलिए हमें अपने पर यह ध्यान रखना है। पहली बात, हम कह तो देते हैं हाँ मैं आत्मा हूं, जब ऐसे प्रसंग में आते हैं, बैठते हैं, परंतु जब हम अकेले हैं, जब कोई मेरे साथ नहीं है, तब मुझे ये स्मृति जागृत है। मैं कोई भी काम करती हूँ अथवा करता हूँ तो मुझे यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कराता हूँ, तो खुद न्यारे बन जाएंगे। जब मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ, तो मालिकपन की अथॉरिटी से मुझे इन कर्म इंद्रियों को चलाना है। ये बात भले अभी हम शब्दों में कह रहे हैं, शब्द इसलिए है कि हमारे पास जो पुरानी समझ है, पुराना विश्वास अपने प्रति है, मैं फलाना हूँ, और उसी प्रकार से हम काम करते हैं। और आज पुराने संसार में होने के कारण हमें शरीर निर्वाह के लिए तो काम करना पड़ता ही है, लेकिन वो करते हुए अंदर में ये हमारी रोशनी जागृत रहे, यह स्मृति बनी रहे, इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा परमात्मा पिता की संतान। जितना हम अंदर इस स्मृति को जागृत रखते हुए कर्म इंद्रियों से कर्म कराते जाएंगे, कर्म भी हमारा श्रेष्ठ होगा, क्यों, यह स्मृति हमारे अंदर दिव्यता की जागृति करेंगी। दिव्यता अर्थात दैवी गुण। दैवी गुण जितना जितना हमारे अंदर जागृत होते जाएंगे, उतना हमारे जीवन की धारणा दिव्य बनती जाएंगी और उस दिव्य धारणा के अनुकूल हमारे कर्म इंद्रियों से जो भी हम कर्म करेंगे, कोई भी ऐसा पाप कर्म, कोई बात में झूठ बोलना, कोई बात के लिए किसके प्रति बुरा सोचना, अपने प्रति कोई हम अच्छी बात सोचे और फिर कोई भी कारण से हम कहे इसमें तो हम मजबूर है, ऐसी मजबूरी हमें स्वयं को महसूस नहीं होगी अगर हमारे अंदर यह दृढ़ विश्वास है हम कौन और किसकी संतान, अर्थात बाप की याद और याद के साथ जो बाप ने हमें स्वयं की पहचान दी, स्वयं के पहचान के साथ साथ जो सिख्याएं दी, उन सिख्याओं पर हमने पूरा ध्यान रख करके जीवन की धारणा वो बनाते गए, अर्थात हमारे मन के अंदर सदा वो उन सिख्याओं की स्मृति बनी रहे और वह सिख्याएं हमें, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, वह हमारे से कर्म वो ही कराएंगी जो श्रेष्ठ है, जो हमारे इस ब्रह्मण कुल जीवन के लिए अनुकूल है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो समझ में तो आता है, परंतु राइट समझते हुए भी फिर ये कहते हैं कि भाई दुनिया ऐसी है, हमारे सामने परिस्थिति ऐसी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा अथवा मैं ये यथारत नहीं कर सकती हूँ। लेकिन परिस्थिति को हम स्वयं की शक्ति से पार करें, जब हमें श्रीमत मिली हुई है, कहाँ नहीं समझ में आता है तो हम फिर पूछ भी सकते हैं। हर कदम पर हम अगर श्रीमत लेते रहेंगे, राय लेते रहेंगे, तो आई हुई परिस्थिति को कुछ अपनी विश्वास की शक्ति के आधार पर और कुछ फिर जब राय लेते हैं तो उस ईश्वरी राय के आधार पर हम उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। ऐसे जब हम अपनी बुद्धि के अंदर यह विश्वास जागृत करें और अपने अंदर यह पूरी दृढ़ता हो, सर्वशक्तिवान भगवान के हम बच्चे हैं, जब सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, तो कौन सी बात हमारे आगे ऐसी हो सकती है जिसको मैं पार न कर सकूं? विश्वास से स्वयं में हिम्मत बढ़ती है और हमारी जीवन की दिव्य धारणा से आत्मा भी शक्तिशाली बनती है, तो हमारी स्व की स्थिति भी दिव्य होने के कारण हम परिस्थिति को समझ लेते हैं। समझने के बाद समय को भी जानते हैं और उसको जान करके श्रीमत के ऊंचाई को, महत्व को मन के अंदर जागृत करते हुए उससे पार हम कैसे हो सकते हैं, वह सॉल्यूशन, समाधान स्वयं में आने लगता है। परंतु विश्वास और हिम्मत हमें कभी अपनी छोड़नी न चाहिए, कभी कहां हमें थोड़ा सहन करना पड़े तो सहन शक्ति है, ये हमारे इस ईश्वरी जीवन को आगे बढ़ा देती है। क्यों काज के पुरानी दुनिया में असली शक्ति काम करती है। असली शक्ति के आगे ईश्वरी शक्ति काम कर सकती है। चलो जब वो अपना रूप दिखाती है असली शक्ति, हम उसको अंदर ही अंदर अपने शांति की शक्ति से सहन करें। सहन शब्द कहने में आता है, परंतु हम समझ लिया कि ये असली शक्ति काम कर रही है, हम तो ईश्वर के बच्चे हैं। असली शक्ति को, असली शक्ति ईश्वरी शक्ति के आगे कभी विजय नहीं पा सकती, ऐसा स्वयं का विश्वास। इसको कहा जाएगा मालिकपन की अथॉरिटी। उस अथॉरिटी से हम स्वयं को भी यह समझा करके अपनी परिस्थिति का समाधान करते रहे। कहां थोड़ा नहीं कर सकते हैं तो हम सहन करें। सहन शक्ति बहुत बातों में बड़ी मदद करती है। इन शक्तियों का क्या क्या वर्णन है वो तो राजयोग के जब लेसन्स देते हैं, हर एक शक्ति कितनी बलवान है, हर एक शक्ति कैसे मदद करती है जीवन के अंदर, ईश्वरी जीवन के अंदर, ईश्वरी नियमों के अंदर यह शक्तियां कितना काम करती है, यह नॉलेज तो हमको मिल चुकी है, परंतु उस नॉलेज को हम अपने मन के अंदर दोहराते रहें और बुद्धि में वो समाई हुई रहे, जो हमें समय समय पर उसकी मदद हम स्वयं को देते रहे, तब हम इन कर्म इंद्रियों से, कर्म इंद्रियां स्वयं कुछ नहीं करती है, कर्म इंद्रियां तो शरीर की है, शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है, शरीर को तो जड़ माना जाता है, जड़ के अंदर चैतन्य शक्ति, मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान। भले ये शुरू का पहला लेसन है, लेकिन ये पहला लेसन ही हमें अंत तक याद रखना है। बाबा अभी तक भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। इसके लिए बहुत, आज की मुरली में था ना, याद की यात्रा के लिए बहुत मेहनत करनी है। अशरीरी बन जाओ, अशरीरीपन का अभ्यास, क्यों का आत्मा अति सूक्ष्म है, मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। देह तो कितनी बड़ी है, देह का रूप कितना, फोटो निकालो तो कितना निकलता है, सब कर्म इंद्रिया है, और आत्मा में कर्म इंद्री कोई नहीं, परंतु सर्व कर्म इंद्रियों को सकाश देने वाली, सर्व कर्म इंद्रियों को चलाने वाली, वह सकाश दिव्य गुणों से संपन्न, दिव्यता और पवित्रता से संपन्न। जहां पवित्रता है वहां सत्यता है, जहां पवित्रता और सत्यता है वहां दिव्यता की शक्ति अर्थात दैवी गुण सहज धारण होते हैं। अब इन सब बातों पर जितना जितना हम अपने अंदर में मनन करेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करो। जो हम रोज पढ़ते हैं उसको हम अपने मन के अंदर बार बार याद करें, और ऐसा याद करें जो हमारी बुद्धि में वह स्मृति स्वरूप बन जाए, स्मृति बन जाए, और जब स्मृति बन जाती है तो उसको स्वरूप में लाना बड़ा सहज होता है। वह स्मृति समय पर अपना काम कराती है जरूर। इन सब का मूल आधार निश्चय की दृढ़ परपक्ता और निश्चय के परपक्ता के साथ साथ जिसको विश्वास भावना कही जाती है, बाप के प्रति इतनी ऊंची भावनाएं, भगत तो भक्तों की भावनाएं, वह अंधश्रद्धावश होती है, क्योंकि उस भावनाओं को खुद यथारथ रीत से धारण नहीं करते और सब अपनी कामनाओं से संपन्न कर दी है भावनाएं। लेकिन ज्ञान में कामना नहीं रहती है, लेकिन शुद्ध भावना जिससे हमारे अंदर शुद्धता की शक्ति बढ़ती जाए, जो शुद्धता की शक्ति हमारे मन का जो पुराने संस्कार है उनको परिवर्तित कर लेती है। जब मन के संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं तो उस जगह पर फिर हमारे दिव्य संस्कार अर्थात जो बाप से हमें अविनाशी ज्ञान मिला, जो बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिली, उस ज्ञान और योग के आधार पर बने हुए संस्कार जिसके अंदर पवित्रता और दिव्यता समाई हुई है, वे हमारे इमर्ज होते हैं। केवल हमें ये याद रहे कि उन्हीं बातों को हमें बार बार अपने अंदर चिंतन करना है। जो हमारा गीत है, अपनी चिंतन की धारा बदल दो। जो पुरानी चिंतन की धारा है, जो हर परिस्थिति को देख करके हम परिस्थिति पर ही सोचते हैं, बाबा ने हमें सिखाया है परिस्थिति जब आती है तो पहले अपनी स्व स्थिति को याद करो, स्वमान को याद करो, परमात्मा पिता की महान शक्ति को याद करो। सर्वशक्तिमान मेरा बाप है, इस स्मृति को जागृत करो और उस स्मृति के साथ जो हिम्मत आएंगी, हिम्मत से हमारे अंदर उमंग पैदा होगा, उमंग से हम उस दिव्यता को काम में, कर्म इंद्रियों से कर्म में लाएंगी। निश्चित है हमारी उसमें विजय समाई हुई है। बाप कल्याणकारी, जिन्होंने हमें कल्याण का ही रास्ता बताया है, जितना जितना हम बाप को याद करेंगे और उनकी शिक्षाओं को बार बार स्मरण करते हुए स्वरूप में लाएंगे, फिर तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसी रीति से हम अपन को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है वो हमारी जीवन की नेचर बन जाएंगी। और हम ब्राह्मणों की नेचर जब दिव्य बन जाती है तब ही हम अपने पर विजय पाते हैं, अर्थात इन पांच विकारों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार हम अपने मन बुद्धि को ऐसे शुद्ध विचारों से सदा बाप की स्मृति और आत्मनिश्चय से अपन को चलाते रहेंगे तो कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो ज्ञान युक्त न हो। सदा श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमारी स्वस्थिति की शक्ति आगे बढ़ती जाएंगी, जो हमें आगे हर पल पर, हर प्रसंग पर, हर परिस्थिति में समाधान का साक्षात्कार कराती रहेंगी, समाधान के विचार देती रहेंगी। और उन्हीं बातों से हम स्वयं पर भी विजय और विकारों पर भी विजय प्राप्त करते अपने को दैवी गुण संपन्न बना सकेंगे। इसी रीति हमारे अंदर सदा यह शुद्ध चिंतन की धारा बनी रहे तो यह हमारा मन बुद्धि शुद्ध और दिव्य बन जाए, कर्म इंद्रियां सदा श्रेष्ठ कर्म करती रहे तो हम पूर्व कर्मों पूर्व संस्कारों से मुक्त हो करके अपने को नई दुनिया में अर्थात सतो प्रधान बनने के लायक बना सकेंगे। ऐसा ध्यान, ऐसा अटेंशन, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा सदा हम अपने अंदर चिंतन बना करके ही रखें। ओम शांति शांति शांति। बात समझ में आई? किसको कोई प्रश्न पूछना है? पूछना है? कहेंगे क्या पूछे, बाबा ने जो बातें बताई है उसको ही फिर हम आपस में आदान प्रदान करते हैं। जितना हम आपस में उसको आदान प्रदान करते रहेंगे, जितना अपने मुख से बोलेंगे तो पक्का याद रहेगा और फिर करना बड़ा सहज हो जाएगा। नहीं तो कभी याद पड़ता है, कभी भूल जाता है, फिर याद करो तो बड़ी बात लगती है। जब समय आता है परिस्थिति का तब अगर याद करते हैं तो उस समय तो बड़ी बात लगती है। इसलिए सदा हम अपने को इन बाप की सिख्याओं श्रीमत पर चलाते रहें तो परिस्थिति समय भी हमें ये सब बातें बड़ी सहज लगेंगी। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और हम क्लास को संपन्न करेंगे।